इकत्रा ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
आज हम एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही अक्सर थोड़ी जटिलता, थोड़ा रहस्य सा महसूस होता है। लुडविग विटकिनस्टाइन।
हाँ बिल्कुल, काफी गहरा नाम है।
और इस सफर में हमारा गाइड है एसी ग्रेलिंग की लिखी किताब, जो इस कहना चाहिए प्रभावशाली विचारक को समझने का एक बहुत अच्छा रास्ता खोलती है।
सही कहा। विटगिंस्टाइन का नाम शायद अकादमिक दुनिया में ज्यादा गूंजता हो, लेकिन उनके जो विचार हैं वो आज भी, मतलब आज की दुनिया में भी बहुत प्रासंगिक हैं।
कैसे?
मतलब आम श्रोताओं के लिए कैसे? देखिए, हम सब दिन भर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बात करने में, सोचने में, यहाँ तक कि लड़ने झगड़ने में भी। तो विटगिंस्टाइन हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे कई बार हमारी भाषा ही हमारी समस्याओं की जड़ बन जाती है।
अच्छा, भाषा ही समस्या की जड़। ये तो दिलचस्प बात है।
हाँ, चाहे वो गहरी दार्शनिक पहेलियां हों या रोजमर्रा की छोटी मोटी गलतफहमियां, उनकी बातें हमें सिखाती हैं कि कैसे बेहतर संवाद करें, अपनी सोच को कैसे साफ रखें।
और शायद आपसी मतभेदों को भी बेहतर समझें।
बिल्कुल, उनके विचारों में वो ताकत है। तो ये सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है, ये हमारे सोचने, समझने और जीने के तरीके से जुड़ा है।
बिल्कुल। तो चलिए फिर, देर किस बात की। एसी ग्रेलिंग की नज़र से विटकिनस्टाइन के इस अनोखे, थोड़े जटिल लेकिन आकर्षक सफर को समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, देखते हैं भाषा, सोच और दुनिया के बारे में उनके विचार हमें कहाँ तक ले जाते हैं।
लेकिन विटकिनस्टाइन के विचारों में गोता लगाने से पहले थोड़ी बात उनकी करते हैं जिन्होंने उन्हें हमारे लिए इतना आसान बनाया है। लेखक एसी ग्रेलिंग।
हाँ जरूरी है। ग्रेलिंग सिर्फ एक किताबी दार्शनिक नहीं है, जैसा आपने कहा, वो ब्रिटेन के जाने माने पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। मतलब वो जो मुश्किल विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
और ये उनकी खासियत है ना? खासकर विटकिनस्टाइन जैसे विचारक के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है।
बिल्कुल, अक्सर फिलोसोफर्स की भाषा इतनी मुश्किल होती है कि लगता है पता नहीं क्या बात कर रहे हैं।
हाँ, जैसे किसी और दुनिया की बात हो।
सही, लेकिन ग्रेलिंग में वो कमाल की काबिलियत है कि वो उन गहरी गूढ़ बातों को खींचकर जमीन पर ले आते हैं, ऐसी भाषा में जिसे हम आप समझ सकें।
जटिलता को सरल बनाते हैं पर उसका सार नहीं खोने देते।
यही खास बात है, और उनका अपना बैकग्राउंड भी इसमें मदद करता है। ग्रेलिंग खुद विश्लेषणात्मक दर्शन, जिसे अंग्रेजी में एनालिटिक फिलॉसफी कहते हैं, उसके गहरे जानकार हैं।
अच्छा, और ये वही परंपरा है जिससे विटकिनस्टाइन
जैसे विटकिनस्टाइन जुड़े भी थे और जिसे बाद में उन्होंने चुनौती भी दी, तो ग्रेलिंग विटकिनस्टाइन के काम को उसके सही संदर्भ में रखकर देख पाते हैं। वो जानते हैं कि वो किन सवालों से जूझ रहे थे और उनके जवाब क्यों इतने क्रांतिकारी माने जाते हैं।
और मुझे लगता है सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रेलिंग का नज़रिया बहुत संतुलित है। मतलब वो विटकिनस्टाइन की प्रतिभा की तारीफ तो करते हैं पर उन्हें कोई भगवान नहीं बना देते।
बिल्कुल नहीं, जहां जरूरत होती है वहां आलोचना करने से भी नहीं हिचकिचाते, एक क्रिटिकल डिस्टेंस बनाए रखते हैं।
हाँ, ऐसा नहीं कि बस वाह वाही कर दी। इससे पढ़ने वाले को अपनी राय बनाने का मौका मिलता है। वो एक निष्पक्ष गाइड की तरह लगते हैं।
बिल्कुल, तो फिर ये किताब आखिर है किस बारे में? जैसा हमने शुरू में इशारा किया था, ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है।
हाँ, आपने कहा था दार्शनिक जीवनी।
सही, यानी ये विटगिंस्टाइन के जीवन की घटनाओं को उनके विचारों के विकास के साथ बुनकर देखती है। ग्रेलिंग ये दिखाते हैं कि कैसे एक असाधारण, मतलब तूफानी जिंदगी ने कुछ असाधारण विचारों को जन्म दिया।
तो मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि कब क्या हुआ,
जी,
बल्कि ये दिखाना है कि कैसे उनके निजी संघर्ष,
जैसे उनका वियना में वो अमीर लेकिन शायद भावनात्मक रूप से उथल पुथल वाला बचपन,
हाँ, या फिर पहले विश्व युद्ध के मोर्चे का वो भयानक अनुभव, उनका अपना तीव्र, कभी कभी मुश्किल लगने वाला व्यक्तित्व, इन सब ने उनके दार्शनिक विचारों को एक शक्ल दी। उनकी जिंदगी उनके काम से अलग थी ही नहीं।
ग्रेलिंग हमें उनकी पूरी यात्रा पर ले जाते हैं ना।
हाँ बिल्कुल, वियना के उस माहौल से शुरू करते हैं जहाँ एक तरफ तो कला, संगीत, बौद्धिकता चरम पर थी, लेकिन साथ ही एक तरह का पतन भी महसूस हो रहा था।
फिर उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जिससे शायद उनका झुकाव तर्क और संरचना की तरफ हुआ होगा। बिल्कुल, और फिर कैम्ब्रिज में बर्ट्रंड रसल जैसे बड़े दार्शनिकों से मिलना, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना, फिर पहला विश्वयुद्ध, और कमाल की बात यह कि युद्ध के दौरान खाइयों में बैठे बैठे उन्होंने अपनी पहली महान किताब ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस, उसके नोट्स लिखे।
सोचकर ही अजीब लगता है, युद्ध के बीच में दर्शन
है ना। और कहानी यही खत्म नहीं होती। ट्रैक्टेटस लिखने के बाद विटगेंस्टाइन को लगा कि भाई दर्शन की सारी समस्याएं तो मैंने सुलझा दी,
अच्छा
तो उन्होंने दर्शन छोड़ दिया,
हाँ
छोड़ दिया और ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में स्कूल मास्टर बन गए।
क्या बात है।
फिर कुछ समय माली का काम किया, फिर अपनी बहन के लिए घर भी डिजाइन किया एक आर्किटेक्ट के तौर पर। ये सब उनके लिए सिर्फ नौकरियां नहीं थी, ये उनके विचारों के विकास के चरण थे। वो शायद ट्रैक्टेटस की सीमाओं को महसूस कर रहे थे।
और फिर उनकी वापसी हुई कैम्ब्रिज।
हाँ बिल्कुल, नाटकीय ढंग से। और फिर एकदम नए सिरे से सोचना शुरू किया। यहीं से उनके बाद के दौर के विचारों का जन्म हुआ, जो उनकी दूसरी महान किताब फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में सामने आए। हालांकि ये किताब उनकी मृत्यु के बाद छपी।
तो ग्रेलिंग दिखाते हैं कि ये दो दौर, शुरुआती और बाद वाले, भले ही ऊपर से अलग दिखें, पर असल में एक ही खोज के दो पड़ाव थे।
बिल्कुल, ग्रेलिंग बहुत खूबसूरती से ये कनेक्शन दिखाते हैं।
और वो बुनियादी खोज क्या थी? भाषा, विचार और वास्तविकता।
हाँ बिल्कुल, इनके बीच का रिश्ता क्या है? हम दुनिया को जानते कैसे हैं? हमारे शब्द असलियत से जुड़ते कैसे हैं? क्या भाषा दुनिया का आईना है या कुछ और है?
ये सवाल सुनने में बड़े अकादमिक लगते हैं, पर हैं बहुत बुनियादी।
सही कहा, ये हमारी समझ की बुनियाद से जुड़े हैं। और किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि विटगेंस्टाइन का अंतिम लक्ष्य कोई सिद्धांत बनाना नहीं था, बल्कि एक तरह से चिकित्सीय था, थेरेप्यूटिक।
चिकित्सकीय मतलब?
मतलब वो हमें भाषा के उन जालों से आज़ाद करना चाहते थे जिनमें हम अक्सर उलझ जाते हैं। वो मानते थे कि कई तथाकथित दार्शनिक समस्याएं असल में समस्याएं हैं ही नहीं, बल्कि भाषा के गलत इस्तेमाल से पैदा हुई उलझने हैं।
अच्छा, तो उन्हें हल नहीं करना, बस
बस घोल देना है। जैसे कोई गलतफहमी दूर हो जाती है वैसे ही।
चलिए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं, विटगेंस्टाइन के विचारों की इस यात्रा को करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उनके पहले दौर से और ट्रैक्टेटस से।
हाँ, उस वक्त उन पर रसल और फ्रेगे जैसे तर्कशास्त्रियों का गहरा असर था। उनका मुख्य सवाल था, भाषा दुनिया को कैसे दर्शाती है? मतलब जैसे एक नक्शा शहर को दिखाता है, क्या भाषा दुनिया को दिखा सकती है?
और यहीं पर वो लॉजिकल एटमिज्म वाला विचार आया।
बिल्कुल, लॉजिकल एटमिज्म। उन्होंने सोचा कि दुनिया सबसे बुनियादी सरल परमाणु तथ्यों, एटॉमिक फैक्ट्स से बनी है। जैसे दीवार ईंटों से बनती है, वैसे दुनिया इन छोटे छोटे तथ्यों से। और हमारी भाषा में भी इन तथ्यों से मेल खाते हुए प्राथमिक वाक्य, एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस होते हैं। ये वाक्य उन तथ्यों की सीधी तस्वीरें होते हैं, ऐसा उनका मानना था।
तो ये तस्वीर वाली बात ही उनकी पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है।
हाँ वही है, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। विटगेंस्टाइन का मानना था कि एक सार्थक वाक्य की जो तार्किक संरचना है, जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो वास्तविकता की संरचना से मेल खाना चाहिए।
जैसे?
कोई उदाहरण?
जैसे
मान लीजिए संगीत का नोटेशन है, वो धुन की संरचना दिखाता है, या नक्शे पर जगहों की आपसी दूरी असल दूरी के अनुपात में होती है। वैसे ही वाक्य का लॉजिक दुनिया के लॉजिक से मिलना चाहिए। वाक्य दुनिया का एक तार्किक चित्र है, लॉजिकल पिक्चर।
लेकिन इस सिद्धांत का नतीजा तो बड़ा निकला होगा।
हाँ बहुत बड़ा। अगर वाक्य दुनिया का तथ्यात्मक चित्र है, तो सिर्फ वही वाक्य सार्थक हुए जो किसी तथ्य को बयान करते हैं, मतलब जिनका सच या झूठ होना परखा जा सके।
जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, ये परखा जा सकता है।
बिल्कुल, लेकिन नैतिकता जैसे चोरी करना बुरा है, या सौंदर्य, ये पेंटिंग खूबसूरत है, या जीवन का अर्थ,
ये बातें तो तथ्यात्मक नहीं है।
सही, इन्हें सच या झूठ साबित नहीं किया जा सकता। तो ट्रैक्टेटस के हिसाब से ये बातें भाषा की सीमा के बाहर हैं, इन्हें कहा नहीं जा सकता।
और यहीं से वो मशहूर पंक्ति आती है, जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता उसके बारे में चुप रहना चाहिए। ये सुनने में थोड़ी रहस्यमयी लगती है।
हाँ लगती है, लेकिन ग्रिलिंग समझाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं था कि विटगेंस्टाइन नैतिकता या कला को बेकार समझते थे। बिल्कुल नहीं।
तो फिर क्या मतलब था?
ये असल में इन चीजों के प्रति गहरा सम्मान था। वो कह रहे थे कि ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण, इतनी गहरी हैं कि हमारी रोजमर्रा की तथ्यात्मक भाषा इन्हें पकड़ ही नहीं सकती। इन्हें शब्दों में बांधने की कोशिश करना एक तरह से इनकी अहमियत कम करना है।
अच्छा, तो इन्हें जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है।
हाँ, दिखाया जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता, ये फर्क था।
लेकिन फिर वो बड़ा मोड़ आया, द टर्न।
हाँ द टर्न। जैसा हमने बात की, ट्रैक्टेटस के बाद विटगेंस्टाइन दर्शन से दूर चले गए, स्कूल में पढ़ाया, माली का काम किया, आर्किटेक्चर किया। इस दौरान उन्हें अपनी पुरानी थ्योरी बहुत संकरी बहुत सीमित लगने लगी।
उन्हें लगा कि असल जिंदगी की भाषा तो बहुत अलग है।
बिल्कुल, असल जिंदगी में हम जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं वो ट्रैक्टेटस की उस कठोर तार्किक भाषा से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा रंगीन है, ज्यादा लचीली है।
सुना है उनकी दोस्तों के साथ बातचीत का भी इसमें बड़ा हाथ था, वो पियरो स्ट्राफा वाला किस्सा।
हाँ, वो बड़ा मशहूर किस्सा है। स्ट्राफा जो एक इटालवी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक बार हाथ से खास इटालियन इशारा किया जो शायद निराशा या संदेह दिखाता है, और विटगेंस्टाइन से पूछा इसकी तार्किक संरचना क्या है।
और विटगेंस्टाइन
निंतर रह गए।
उन्हें समझ आया कि भाई भाषा सिर्फ दुनिया का चित्र बनाने का काम नहीं करती, वो तो अनगिनत और भी काम करती है। इशारा करना, मजाक करना, हुक्म देना, सवाल पूछना, प्रार्थना करना, कितने सारे काम हैं।
तो इसी नई समझ के साथ वो कैम्ब्रिज लौटे।
हाँ, और बिल्कुल नए सिरे से सोचना शुरू किया। नतीजा था फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस के विचार। उन्होंने ट्रैक्टेटस की उस सोच को कि भाषा का एक ही सार है, यानी दुनिया का चित्र बनाना, उसे पूरी तरह नकार दिया।
तो अब भाषा क्या बन गई उनके लिए?
अब उनके लिए भाषा एक बहुआयामी चीज बन गई। उन्होंने कहा कि भाषा एक औजारों का बक्सा, टूलबॉक्स की तरह है।
औजारों का बक्सा। अच्छा।
हाँ,
सोचिए एक मैकेनिक के बक्से के बारे में।
हाँ,
उसमें हथौड़ा है, तेजकश है, पाना है, आरी है, हर औजार का अपना अलग काम है ना?
बिल्कुल
आप हथौड़े से पेच नहीं कस सकते।
सही। इसी तरह विटगेंस्टीन ने कहा, भाषा के शब्दों और वाक्यों के भी अनगिनत उपयोग होते हैं। भाषा का कोई एक सार नहीं, बल्कि ये विभिन्न कामों के लिए औजारों का एक संग्रह है।
की बात की।
हाँ, लैंग्वेज गेम्स।
लैंग्वेज गेम्स।
हाँ, उनका कहना था कि भाषा का इस्तेमाल हमेशा किसी खास गतिविधि या संदर्भ में होता है, और हर गतिविधि के अपने नियम होते हैं, जैसे किसी खेल के नियम होते हैं।
उदाहरण के लिए,
जैसे मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मजदूर दूसरे से कहता है, ईट, ये एक पूरा लैंग्वेज गेम है, इसका मतलब है मुझे एक ईट दो। लेकिन यही शब्द ईट अगर कोई बच्चा खेलते हुए कहे तो उसका मतलब कुछ और हो सकता है।
हाँ, मतलब संदर्भ पर निर्भर करता है।
बिल्कुल, किसी शब्द का मतलब उसके संदर्भ और उपयोग से तय होता है। यहीं से उनका दूसरा मशहूर सूत्र वाक्य आया, अर्थ उपयोग है।
मीनिंग इज यूज।
शब्द का मतलब डिक्शनरी में मत ढूंढो, उसके इस्तेमाल में देखो।
और इसी अर्थ उपयोग है वाले विचार से वो फैमिली रिजेम्बलेंस वाली बात जुड़ी है।
हाँ, फैमिली रिजेम्बलेंस। विटगेंस्टाइन ने हमें खेल शब्द पर सोचने को कहा। क्या दुनिया के सारे खेलों में कोई एक चीज है जो सब में कॉमन हो?
मुश्किल है सोचना। ताश, क्रिकेट, शतरंज, वीडियो गेम, बच्चों का खेलना, सब अलग अलग है।
सही कहा, कोई एक ऐसी खासियत नहीं है जो सभी में हो। लेकिन फिर भी हम इन सबको खेल कहते हैं।
क्यों?
क्यों? विटगेंस्टाइन ने कहा, क्योंकि इनमें एक दूसरे से मिलती जुलती विशेषताओं का एक जाल होता है, ओवरलैपिंग समानताएं। ठीक वैसे ही जैसे एक ही परिवार के सदस्यों में शक्ल सूरत की समानताएं होती हैं। किसी की आंखें पिता जैसी, नाक माँ जैसी, पर कोई एक गुण सब में नहीं होता।
अच्छा, तो ये उस पुरानी सोच पर हमला था कि हर चीज की एक सटीक परिभाषा होनी चाहिए।
बिल्कुल, ये दर्शन की उस पारंपरिक खोज पर बड़ा हमला था।
और एक और बहुत गहरा विचार था, प्राइवेट लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट, निजी भाषा वाली बात।
हाँ, प्राइवेट लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट, ये बहुत क्रांतिकारी था। विटगेंस्टाइन ने सवाल उठाया, क्या ऐसी भाषा हो सकती है जिसे सिर्फ एक ही इंसान समझ सके?
जैसे मुझे कोई अनोखा दर्द हो रहा है और मैं उसका नाम रख लूं, टिंगल।
हाँ बिल्कुल, क्या ये टिंगल शब्द वाकई कोई अर्थ रखता है? विटगेंस्टाइन ने तर्क दिया कि नहीं। क्यों? क्योंकि भाषा अपनी प्रकृति से ही सामाजिक होती है। हम शब्दों का मतलब दूसरों से सीखते हैं, सार्वजनिक नियमों और व्यवहारों के जरिए। अगर टिंगल का मतलब सिर्फ मैं ही जानता हूं, तो मैं ये कैसे तय करूंगा कि मैं हर बार उसका सही इस्तेमाल कर रहा हूं? कोई बाहरी जांच का तरीका ही नहीं है। भाषा को काम करने के लिए सार्वजनिक नियमों और जांच की जरूरत होती है।
तो ये सारे नए विचार, लैंग्वेज गेम्स, फैमिली रिजेम्बलेंस, प्राइवेट लैंग्वेज का खंडन, इनका आधार क्या था? आपने फॉर्म्स ऑफ लाइफ का जिक्र किया था।
हाँ, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये हमारी वो साझा मानवीय गतिविधियां हैं, हमारी प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे दर्द में चिल्लाना, खुशी में हंसना, हमारी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो हमारे भाषा के खेलों को संभव बनाती हैं और उन्हें अर्थ देती हैं।
मतलब भाषा हवा में नहीं तैरती।
बिल्कुल नहीं, वो हमारे जीने के तरीकों में रची बसी होती है। अगर हमारी बुनियादी जरूरतें, आदतें, दुनिया को अनुभव करने के तरीके बिल्कुल अलग होते, तो हमारी भाषा भी बिल्कुल अलग होती।
तो इन सब विचारों से विट्गेन्स्टाइन हमें क्या सिखा रहे थे? ग्रेलिंग की किताब से कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं?
पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कि कई गहरी दार्शनिक समस्याएं असल में भाषा की गलत फहमी से पैदा होती हैं।
अच्छा, मतलब दिक्कत दुनिया में नहीं भाषा में है।
कई बार हाँ, हम शब्दों को उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल से उखाड़कर उन्हें अजीबोगरीब अमूर्त अर्थ देने लगते हैं। समय क्या है, मन क्या है, और फिर उन्हीं में उलझ जाते हैं। विट्गेन्स्टाइन ने कहा, इन सवालों का जवाब ढूंढने के बजाय ये देखो कि हम इन शब्दों का इस्तेमाल असल में कैसे करते हैं।
तो दर्शन का काम दुनिया के रहस्य खोलना नहीं
बल्कि हमारी भाषा की उलझनें सुलझाना है। इसे दर्शन में लिंग्विस्टिक टर्न भी कहते हैं, भाषा पर ध्यान केंद्रित करना।
दूसरा अहम संदेश,
अर्थ का सामाजिक और प्रासंगिक स्वरूप। जैसा हमने लैंग्वेज गेम्स और प्राइवेट लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट में देखा, मतलब किसी के दिमाग में छिपी कोई निजी चीज नहीं है।
वो तो साझा गतिविधियों और नियमों में बनता है।
बिल्कुल, अर्थ साझा गतिविधियों, नियमों और हमारे फॉर्म ऑफ लाइफ में बनता है और पाया जाता है। भाषा एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट नहीं। इसका मतलब है कि संवाद और आपसी समझ तभी मुमकिन है जब हम एक साझा दुनिया और भाषा के खेल में हिस्सा ले रहे हों।
सोचे भारत में ही इज्जत या धर्म जैसे शब्दों के कितने अलग अलग उपयोग हो सकते हैं अलग अलग समुदायों में।
बिल्कुल, विट्गेन्स्टाइन हमें इन अंतरों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।
और तीसरा संदेश था दर्शन एक चिकित्सा के रूप में।
हाँ, दर्शन एक चिकित्सा के रूप में। विट्गेन्स्टाइन का मानना था कि दार्शनिक का काम कोई भव्य नया सिद्धांत गढ़ना नहीं बल्कि उन बौद्धिक बीमारियों का इलाज करना है जो भाषा के गलत इस्तेमाल से पैदा होती हैं।
वो मक्खी वाली मिसाल।
हाँ, उनकी वो प्रसिद्ध उपमा, मक्खी को बोतल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना। दार्शनिक समस्याएं उस मक्खी की तरह हैं जो एक कांच की बोतल में फंस गई है। रास्ता साफ है पर उसे दिख नहीं रहा है। दर्शन का काम है उसे धीरे से रास्ता दिखा देना, मतलब ये स्पष्ट कर देना कि भाषाई भ्रम कहाँ पैदा हो रहा है ताकि वो खुद बाहर निकल सके।
चौथा संदेश था भाषा और विचार की सीमाओं के बारे में।
हाँ, ट्रैक्टेटस में ये सीमाएं बहुत कठोर थीं, जो कहा जा सकता है तथ्य और जो सिर्फ दिखाया जा सकता है नैतिकता कला। बाद के काम में विट्गेन्स्टाइन ने माना कि सीमाएं इतनी स्पष्ट नहीं हैं, वे ज्यादा लचीली हैं और संदर्भ पर आधारित हैं।
हर लैंग्वेज गेम की अपनी सीमाएं होती हैं।
बिल्कुल, यहीं पर उनका वो मशहूर उदाहरण आता है, अगर शेर बोल सकता तो हम उसे समझ नहीं पाते।
हाँ, ये बड़ा अजीब लगता है, क्यों नहीं समझ पाते?
इसलिए नहीं कि शेर की ग्रामर खराब होगी बल्कि इसलिए कि शेर का फॉर्म ऑफ लाइफ, उसकी दुनिया, उसकी जरूरतें, उसकी इंद्रियां, उसका व्यवहार, वो हमसे इतना अलग है कि उसकी भाषा हमारे लिए बेमानी होगी। हम उसके लैंग्वेज गेम को, उसके संदर्भ को समझ ही नहीं पाएंगे।
और आखिर में ग्रॉलिंग इस बात पर भी जोर देते हैं कि विट्गेन्स्टाइन के काम में एक निरंतरता है।
हाँ, ऊपरी तौर पर भले ही बदलाव दिखें लेकिन उनकी बुनियादी चिंता हमेशा एक ही रही, स्पष्टता कैसे हासिल की जाए, भाषा और दुनिया का रिश्ता क्या है, अर्थ की शर्तें क्या हैं। ये एक ही गहरी खोज के दो अलग अलग पड़ाव थे।
अच्छा, और इन गहरे विचारों को विट्गेन्स्टाइन ने कुछ यादगार पंक्तियों में भी समेटा, उन पे थोड़ी बात करते हैं।
हाँ जरूर, ग्रेलिंग की किताब में ये प्रमुखता से दिखती हैं और ये उनके दर्शन का सार पकड़ती हैं।
जैसे ट्रैक्टेटस से वो पंक्ति, मेरी भाषा की सीमाएं मेरी दुनिया की सीमाएं हैं, ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है।
है। शुरुआती विट्गेन्स्टाइन के लिए इसका मतलब था कि जो कुछ तार्किक रूप से कहा जा सकता है वही सोचा जा सकता है, वही दुनिया का हिस्सा है। जो तार्किक भाषा में नहीं समाता वो हमारी दुनिया की सीमा के बाहर है।
और बाद में इसका मतलब शायद ज्यादा लचीला हो गया।
हाँ शायद, कि हम जिस तरह के लैंग्वेज गेम्स खेलते हैं वही हमारी समझ की दुनिया बनाते हैं।
और ट्रैक्टेटस का वो अंतिम वाक्य, जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता उसके बारे में चुप रहना चाहिए।
हाँ, ये कोई आदेश नहीं है बल्कि एक समझ है। ये नैतिकता, कला, आध्यात्मिकता जैसी चीजों को खारिज करना नहीं बल्कि ये स्वीकार करना है कि भाषा की अपनी सीमाएं हैं। इन अनुभवों की गहराई शब्दों से परे है।
कभी कभी खामोशी ज्यादा बोलती है।
बिल्कुल।
फिर इन्वेस्टिगेशन से वो क्रांतिकारी विचार, किसी शब्द का अर्थ भाषा में उसका उपयोग है।
ये कितना सरल लगता है पर कितना गहरा है। मतलब अब अर्थ किसी स्थिर चीज से जुड़ा नहीं है।
नहीं, अर्थ इस बात में है कि लोग उस शब्द को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस काम के लिए करते हैं। किसी शब्द का मतलब जानना है तो देखो कि लोग उसे कब, कहां, कैसे और क्यों इस्तेमाल करते हैं।
और दर्शन के उद्देश्य पर वो मक्खी वाली बात।
हाँ, वो शक्तिशाली रूपक, मक्खी को बोतल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना। ये विट्गेंस्टाइन के दर्शन के चिकित्सीय पहलू को दिखाता है। दार्शनिक का काम सिद्धांतों का जाल बुनना नहीं, बल्कि हमें अपने ही बनाए भाषाई जालों से निकलने में मदद करना है। सोच को साफ करना, उलझनों को सुलझाना, यही असली काम है।
ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब वो सवाल जो शायद कई श्रोताओं के मन में होगा, क्या ये विचार जो इतने अमूर्त और दार्शनिक लगते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी किसी काम आ सकते हैं? बिल्कुल। ग्रेलिंग की किताब का जवाब है हाँ, और कई तरीकों से। सबसे पहले तो बेहतर संचार और संघर्ष समाधान में।
वो कैसे?
सोचिए, कितनी बार हमारी बहसें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम एक ही शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल अलग अलग मतलबों में कर रहे होते हैं, जैसे न्याय, विकास, सफलता।
हाँ, होता है ऐसा।
विट्गेंस्टाइन हमें सिखाते हैं कि परिभाषा पर लड़ने के बजाय पूछें, जब आप ये शब्द कहते हैं तो आपका असल मतलब क्या होता है? आप किस तरह के कामों या नतीजों की बात कर रहे हैं? कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या? इससे फोकस अमूर्त परिभाषा से हटकर ठोस उपयोग पर आता है, गलतफहमियां कम हो सकती हैं।
अच्छा, और दूसरा फायदा?
यह समस्या समाधान का एक नया दृष्टिकोण देता है। कई बार हम किसी मुश्किल में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हम उसे बयान करने के तरीके में उलझे होते हैं। विट्गेंस्टाइन हमें रुककर सोचने को कहते हैं, क्या ये वाकई एक बाहरी समस्या है या ये भाषा की किसी जाल या गलत तस्वीर के कारण पैदा हुई उलझन है?
जैसे अगर कोई टीम बार बार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की शिकायत करे।
हाँ, तो सिर्फ इस लेबल पर अटके रहने के बजाय ये पूछना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है कि किन खास स्थितियों में कम्युनिकेशन फेल होता है, लोग असल में क्या कहते या करते हैं जिससे दिक्कत होती है। समस्या को भाषा के स्तर पर साफ करने से अक्सर समाधान का रास्ता खुल जाता है।
तीसरा, आपने कहा था सहानुभूति और सांस्कृतिक समझ।
हाँ, फॉर्म्स ऑफ लाइफ और लैंग्वेज गेम्स की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि अलग अलग संस्कृतियों, समुदायों या पीढ़ियों के लोगों के जीने के तरीके और भाषा के खेल हमसे अलग हो सकते हैं, इसलिए उनकी बातें या व्यवहार हमें अजीब लग सकते हैं।
वो शेर वाली बात याद है?
बिल्कुल, अगर हम ये समझें कि उनका फॉर्म ऑफ लाइफ अलग है तो हम तुरंत उन्हें गलत या अतार्किक कहने के बजाय उनकी दुनिया को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इससे दूसरों के प्रति हमारा नजरिया ज्यादा खुला और सहनशील बन सकता है।
चौथा फायदा, शब्दाडंबर से बचाओ।
हाँ बिल्कुल, आज की दुनिया में बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों, जार्गन का बहुत चलन है ना, खासकर राजनीति, विज्ञापन, कॉरपोरेट जगत में। विट्गेंस्टाइन हमें इन सब के प्रति शंकालु होना सिखाते हैं।
हमें पूछना चाहिए कि इसका असली मतलब क्या है।
बिल्कुल, इस भारी शब्द का जमीनी मतलब क्या है? इसका व्यावहारिक उपयोग क्या है? क्या आप इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं? कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं?
यह हमें बातों की तह तक जाने और खोखले दावों से बचने में मदद करता है। एक तरह से यह हमें बौद्धिक रूप से चौकन्ना बनाता है।
और पांचवा, अनकही बातों का महत्व पहचानना।
हाँ, ट्रैकेटस का कहने बनाम दिखाने का अंतर हमें बाद में भी याद दिलाता है कि जीवन के कई सबसे गहरे और महत्वपूर्ण पहलू, जैसे प्यार, भरोसा, साहस, कला का अनुभव, सिर्फ शब्दों से बयान नहीं हो सकते।
उनका असली वजन कर्मों और अनुभवों में झलकता है।
सही कहा। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ बातों पर न जाएं, बल्कि लोगों के जीने के तरीके और उनके कामों को भी देखें। कभी कभी जो कहा नहीं जाता वो कहे हुए से ज्यादा मायने रखता है। तो इस पूरी गहरी और दिलचस्प चर्चा से हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य टेकअवेज क्या होने चाहिए?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके को, हमारी दुनिया को गढ़ती है, और अक्सर हमारी बहुत सी बौद्धिक और व्यावहारिक दिक्कतें भाषा के गलत या धुंधले इस्तेमाल से पैदा होती हैं। हम अनजाने में शब्दों के जाल में फंस जाते हैं।
बिल्कुल सही। और विट्गेंस्टाइन का पूरा काम हमें इसी जाल के प्रति सचेत करता है और उससे निकलने के औजार देता है। ये हमें स्पष्टता यानी क्लैरिटी के महत्व की याद दिलाता है, न सिर्फ लिखने बोलने में बल्कि सोचने में भी।
और ये सिर्फ दार्शनिकों का काम नहीं है, हम सबको अपने शब्दों के असर और उनके वास्तविक कामकाज पर ध्यान देने की जरूरत है।
हाँ, और ये एक तरह की बौद्धिक विनम्रता भी सिखाता है, ये मानना कि हम सब कभी ना कभी भाषा के भ्रम में पड़ सकते हैं और हमें लगातार अपनी समझ को साफ करते रहने की जरूरत है।
इका मेथड दिया, एक ऐसी पद्धति जिससे हम भाषा के भ्रमों से मुक्त होकर दुनिया को, अपनी समस्याओं को और शायद खुद को भी ज्यादा साफ तौर पर देख सकें।
उनका लक्ष्य ये बताना नहीं था कि क्या सोचें, बल्कि ये सिखाना था कि कैसे सोचें। ज्यादा स्पष्ट रूप से, ज्यादा ध्यान से।
बिल्कुल।
और एसी ग्रेलिंग की ये किताब इस मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी विचारक को समझने का एक शानदार दरवाजा खोलती है। ये न सिर्फ विटकिंस्टाइन के जीवन और विचारों को सुलभ बनाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि वो आज हमारे लिए क्यों प्रासंगिक हैं।
हाँ, यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को स्पष्ट करना और अपनी भाषा को समझना दुनिया को स्पष्ट करने और शायद थोड़ा बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।
सोच की स्पष्टता कोई अकादमिक विलासिता नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है।
एक अंतिम विचार जो शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, जिस पर वो खुद सोच सकते हैं।
हाँ, बताइए।
अगर भाषा वाकई हमारे सोचने और दुनिया को देखने के तरीके को इतना प्रभावित करती है, तो क्या नई भाषाएं सीखना या अपनी ही भाषा के अलग अलग लैंग्वेज गेम्स के प्रति ज्यादा जागरूक होना, जैसे कविता, विज्ञान, कॉमेडी, क्या ये हमें दुनिया को नए, अधिक रचनात्मक और शायद अधिक सहानुभूतिपूर्ण तरीकों से देखने में मदद कर सकता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्त्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।